इंडिया बोल शनिवार 22 अप्रैल आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बीजेपी के खिलाफ मायावती किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। आने वाले चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी या इन पार्टियों के आपसी अंतर्विरोध बीजेपी को और मजबूत करेंगे? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पूर्वी शहर मजारे शरीफ पहुंचे हैं, जहां पर कल तालिबान ने एक सैनिक अड्डे पर हमला किया था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 100 से ज्यादा सैनिकों की इस हमले में मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। कल चरमपंथियों ने तब हमला किया था जब सैनिक मस्जिद से निकले थे और कुछ लोग कैंटीन में मौजूद थे। चरमपंथियों ने सैनिकों की कैंटीन को भी निशाना बनाया था। एक सैनिक ने बताया कि चरमपंथियों ने सेना के ट्रकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। तालिबान ने कहा कि उसके लड़ाकों ने धमाके करके आत्मघाती हमलावरों के लिए सैनिक अड्डे में घुसने के लिए रास्ता बनाया था। हमले में घायल हुए सैनिकों का कहना है कि हमलावरों को सैनिक कैंप के अंदर से मदद मिली हो सकती है। एक घायल सैनिक मोहम्मद हुसैन ने बीबीसी को ये बताया। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो तीन लोग सेना की वर्दी में सैनिक गाड़ी में सवार थे। इन लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उनके कुछ लोग सैनिक बेस में मौजूद रहे होंगे, तभी वो अंदर घुसने में कामयाब हुए। गाड़ी में एक हमलावर के पास मशीन गन थी और वो सब पर गोलियां चला रहा था। जब मैं घायल हो गया, उसके बाद कमांडो दस्ता अंदर आया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये थे मोहम्मद हुसैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की की विपक्षी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग पर पिछले हफ्ते हुए जनमत संग्रह में धांधली कराने का आरोप लगाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान की संवैधानिक शक्तियां बढ़ाने के पक्ष में पिछले हफ्ते जनमत संग्रह में बहुमत में वोट पड़े थे। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता लेवेंट गोक ने संसद में कहा कि चुनाव की कोई वैधता नहीं बची है। पार्टी अपने अगले कदम पर विचार कर रही है। चुनाव आयोग के शिकायत को ठुकराने के बाद रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने शुक्रवार को सर्वोच्च प्रशासकीय अदालत में अपील की है। पार्टी मानवाधिकार की यूरोपीय अदालत में भी अपील करने पर विचार कर रही है। फ्रांस में कल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस बीच फ्रांस की पुलिस ने गुरुवार को पेरिस में हुए हमले के मामले में हमलावर के बारे में जांच में जुटी हुई है। पेरिस के प्रोसिक्यूटर फ्रांसवा मोलिन्स ने कहा कि हमलावर को 4 मामलों में इससे पहले दोषी पाया गया था। पेरिस के शॉ एलिजे इलाके में पुलिस बस पर हमला करने वाले शख्स की पहचान करीम शेउफ्री के रूप में हुई थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर शेउफ्री की मौत हो गई थी। गुरुवार को पेरिस में पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें 3 और लोग घायल भी हुए थे। आज पृथ्वी दिवस के मौके पर दुनिया भर में विज्ञान के समर्थन में कई शहरों में हो रही रैलियों में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। अमरीकी आयोजकों ने मार्च फॉर साइंस के नाम से इन रैलियों का आयोजन किया है। आयोजकों का कहना है कि विज्ञान के राजनीतिक हलकों से हो रही तौहीन के विरोध में ये रैलियां निकाली जा रही हैं, खासतौर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ जिसमें वो वैज्ञानिक संस्थाओं के फंड में कटौती करने जा रहे हैं। ट्रंप पर्यावरण में बदलाव को भी अफवाह करार दे चुके हैं। ये रैलियां अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के 500 शहरों में हो रही हैं। जर्मनी में आप्रवासियों की विरोधी एएफडी पार्टी के नेता को अपनी ही पार्टी में करारा झटका लगा है। एएफडी पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने पार्टी नेता फ्रॉक पेट्री के दूसरी पार्टियों से गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं कोलोन में हो रही पार्टी सम्मेलन के बाहर एएफडी के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे और पुलिस के साथ झड़पों में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इराक की सेना ने मोसुल में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सफलता का दावा किया है। सेना का कहना है कि मोसुल का काफी हिस्सा आईएस से मुक्त करा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। 2014 के चुनाव, उसके बाद कई राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव और उसके बाद फिर उपचुनाव, बीते सालों में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो एकजुट नहीं हैं और एक के बाद एक लगातार अपनी राजनीतिक ज़मीन खोते जा रहे हैं। तो उनकी इस दशा में कुछ सुधार होगा आने वाले दिनों में? क्या वो आपसी विरोध को भूल कर एक साथ आ पाएंगे और क्या उनकी जो रणनीति है वो उनके सामने खड़े बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें, कुछ बाधाएं या फिर कोई चुनौती पेश करने की स्थिति में होंगी या नहीं होंगी? इन सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और एक जरूरी सूचना मैं आपको पहले ही कार्यक्रम के हिस्से में बता दूं कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारे टोल फ्री नंबर इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। हमारे तकनीकी सहयोगी लगातार कोशिश में हैं कि उसे चालू कर सकें और फिर आपके फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आसान होंगे हमारे लिए लेने के लिए। लेकिन इस बीच में चर्चा शुरू करते हैं। मधुसूदन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पिछले 3-4 सालों में राजनीतिक दलों की जो स्थिति सब लोगों ने देखी है भारत में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारत की जो मुख्य पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात हो, क्या आपको लगता है कि जो उनकी चुनावी मैदान में जो उनकी हार हुई है या जो वर्तमान उनकी स्थिति है, उससे उन्होंने कोई सबक लिया है?
मैं कैसे समझ सकता हूँ कि उनके अंदर ये एक तरह की कोशिश ज़रूर है कि एक संयुक्त स्तर पर रणनीति बनाई जाए ताकि मोदी की चुनौती से लड़ा जाए, लेकिन ये एकजुट नहीं हो पाते। जैसा कि पिछले दिसंबर में आपने देखा, जब राहुल गांधी ने तमाम दलों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें 3-4 पार्टियां ही पहुंच पाई थीं, और इनके अंदर वैचारिक फांके इतनी ज़्यादा हैं कि ये जुड़ नहीं पाते। इनके अंदर नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस को एक तरह से काट मार गया है, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और जिस पार्टी रही है और जिसने इतने वर्षों तक देश पर राज किया है, उसमें नेतृत्व में कोई कल्पनाशीलता नहीं है, उसके नेतृत्व में कोई जुझारूपन नहीं है, उसका नेतृत्व किसी चुनौती को देने के लिए तैयार नहीं है और उसका नेतृत्व इस बात को नहीं जानता कि किस समय बोलना चाहिए। इन सब कारणों से जो कुछ ये करना चाहते हैं वो एक तरह से हास्यास्पद होकर रह जाता है और इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। ये बात अलग है कि मोदी की जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है, उन्हें कारपोरेट घरानों का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्होंने पूरे चुनाव को, 2014 में जो चुनाव लड़ा गया था उस चुनाव को ही राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर उसको लड़ा था, तो वो अब सारे चुनावों में मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है और मोदी की टक्कर का एक भी नेता ये हमारी पार्टियां अभी तक खोज पाने में असमर्थ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत आशाजनक स्थिति नहीं है, जो कि देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।
जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका नाम है अनुज। जी, आप कहां से बात कर रहे हैं अनुज?
हाँ सर, नमस्कार, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ।
जी अनुज, चेन्नई भारत के दक्षिण हिस्से से बात कर रहे हैं आप। जी, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
सर, विपक्ष एकजुट तो होगी लेकिन कारगर होगा इसमें हमें संदेह है।
विपक्ष लेकिन जी
आकार वो होंगे जरूर एकजुट, क्योंकि सबकी जरूरत है और पब्लिक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये काम कम और हल्ला ज्यादा हो रहा है। आज के डेट में बीजेपी कर क्या रही है कि काम तो जो होना है वो तो छोटी मोटी कर ही रही है, लेकिन हल्ला ज्यादा मचा रही है, प्रचार ज्यादा कर रही है और पब्लिक को इसमें भ्रमित कर करके तो सारा ये चीज पब्लिक भी चाह रही है, लेकिन उस तरीके का कोई नेता नहीं है कि उनको, यदि मान लीजिए सारे विपक्ष मिल भी जाते हैं और कोई एक नेता चुन भी जाते हैं, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी को रख देते तो सारे वो फेल हो जाते हैं, 0/0 हो जाते हैं।
जी अनुज, जी जी आपने अपनी बात कही। जो अनुज कह रहे हैं वो कई और लोगों का भी ये मानना है कि जो विपक्ष है वो एकजुट होने की शायद कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उतनी बड़ी कोशिश नहीं है। दूसरी बात है जो इन्होंने कही कि उनके सामने कोई ऐसा नेता नहीं है। अविनाश चंद्र हैं, वो फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि जो विपक्षी दल हैं पहले अपना प्रधानमंत्री तय कर लें, एकजुटता अपने आप आ जाएगी। तो एक उनके अंदर जो है कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जो सब पार्टियों को स्वीकार्य हो और जिसकी छवि, जिसकी जो पूरी स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो ज़्यादा उभर करके आए। आप क्या कहते हैं?
मैं यही बात मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कही कि देखिए कोई नेता नहीं है मोदी की टक्कर का। अब आपको एक अवसर मिला है राष्ट्रपति चुनाव का, आप इसके लिए सक्रिय हो गए हैं, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार मिलके आए हैं और इसके बाद येचुरी ने बयान जारी किया है कि कोई ऐसा सेकुलर किस्म का आदमी चुना जाए जो मोदी को टक्कर दे सके और सारे दलों में आपस में बातचीत होनी चाहिए, वो सारी बातें चलेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 14,000 वोटों की कमी पड़ेगी बीजेपी को जिताने के लिए अपने प्रत्याशी को, तो वो तो कमी वो आसानी से पूरा कर लेंगे। अब जो कुछ तमिलनाडु में चल रहा है, अगर उसके कुछ परिणाम दूसरे हुए, माने जिस तरह की दो फांक हुई थी फिर आपस में जुड़ रहे हैं, ऐसी बात है, तो जो पन्नीर सेल्वम है इनको मैनेज करना बीजेपी के लिए ज्यादा आशाजनक।
मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे जो राजनीतिक दलों को एकजुट करने की बातचीत हो रही है, लेकिन एक बड़ा उदाहरण आया है सामने उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने बिहार के चुनाव में देखा कि वहां पर तीनों दल साथ मिलकर के लड़े, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, और उसका परिणाम ये आया कि बीजेपी परास्त हुई। लेकिन वही फॉर्मूला बहुत काम नहीं आया उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएसपी के वोट जोड़ लें और समाजवादी पार्टी के वोट जोड़ लें तो ये दोनों वोट मिलकर काफ़ी पर्याप्त थे, लेकिन बीएसपी में और समाजवादी पार्टी में चूहे बिल्ली की लड़ाई है। अब बीएसपी कह रही है कि हम मोदी की सरकार को या इस बीजेपी को हराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, वो कहाँ जाएंगे, नेता कौन होगा, सब नेता बनने के लिए तैयार रहते हैं।
मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाता हूँ, 89 की बात याद दिलाता हूँ कि जब उस वक्त बीपी सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी मुहिम खड़ी हो गई थी और विपक्ष के काफ़ी दल एक साथ आ गए थे और तब कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला था लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी थी, बावजूद उसके उसकी सरकार नहीं बनी, तब बीजेपी ने भी उसको समर्थन दिया और वो लोग एक सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, कांग्रेस को कम से कम सत्ता से बाहर रखने में कामयाब हुए थे। उस तरह की स्थिति क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दिख सकेगी?
नहीं, अभी तो चुनाव 2 साल बाद होने हैं जी, और उससे पहले तो कई इम्तहान होंगे। अभी जो राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें ये प्रयोग सफल में कितने सफल होते हैं ये देखने की बात होगी। जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि ये 2 साल में किसी परिपक्व स्थिति में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ये नहीं पहुंच पाते तो आप मानिए कि जो ट्वीट किया था फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कि 2019 क्या आप 2024 समझिए, इनको निर्विवाद रूप से, अबाधित रूप से इनको कहीं शासन करने का वो ना मिल जाए। देखिए पहले जो था, बिल्कुल पीछे लौटिए, 1967 में संविद सरकारें बनी तो क्षेत्रीय जो नेता थे बड़े प्रमुख होते थे और उन क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस को चुनौती दी उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर भारतीय राज्यों में, और संविद सरकारें बनी, लेकिन वो संविद सरकारें भी चल नहीं पाईं, फिर कांग्रेस का उदय हो गया। 1975 में इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण जैसे नेता थे जिनके झंडे के तले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गईं और उन्होंने चुनौती दी और सरकार उनकी बन गई। इसके बाद ये फिर क्रम आता है, बार बार इस तरह की स्थिति आई है, लेकिन तब नेतृत्व तो मौजूद था। अब आप कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, जिनको सारी ताकतें सौंप दी हैं, सारे अधिकार सौंप दिए हैं सोनिया गांधी जी ने, उनसे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं?
जी, मैं वापस लौटूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए।
सर, मेरा नाम दिलीप है।
दिलीप, कहाँ से बोल रहे हैं दिलीप?
गुजरात से बोल रहा हूँ सर।
जी,
गुजरात से बोल रहा हूँ सर।
अच्छा गुजरात से जी, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
सर आपकी जो चैनल है वो बहुत अच्छे बीबीसी हिंदी, तो मैं ऐसा जानना चाहता कि बीबीसी गुजराती खोल सकते हो गुजरात में?
जी आप जो बात कह रहे हैं वो हमारी चर्चा का इस वक्त विषय नहीं है, और गुजराती चैनल जरूर, जाहिर सी बात है कि गुजराती भाषा में हमारे प्रसारण शुरू होने वाले हैं, हम आपसे कभी और चर्चा करेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत के विपक्षी दल आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के एक मुहिम, एक बहुत अच्छी बात कही है जगदीश उत्वानी ने, वो कहते हैं कि फेसबुक के जरिए उन्होंने कमेंट किया है कि लोकतंत्र में विपक्ष ज़रूरी है, पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने से बेहतर है कि देश के विकास, भ्रष्टाचार से लड़ाई और नए मुख्य मुद्दों के लिए एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए ना हुआ जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों के लिए एकजुट हों, तो ये सर्वथा अभाव दिखता है हमारे यहाँ इस वक्त जो राजनीतिक दलों की स्थिति है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसमें साफ दिखता है कि चुनाव ही सबसे अहम मुद्दा है, चुनाव में जीतना, चुनाव के लिए गठबंधन करना। तो आपको लगता है कि जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे राजनीतिक दल दूर हो रहे हैं?
देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू में कहा गया कि विकास को लेकर
जी
लड़ा जाएगा जी। और लड़ा जा रहा है, ये घोषणा बार बार की गई, लेकिन बीच बीच में किस तरह से हिंदुत्व की खुराक दी गई चुनाव अभियान में, ये भी किसी से छिपा नहीं। और उसके बाद एक खांटी हिंदुत्व का व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। तो आप विकास का करें, जरूर करें विकास, लेकिन मुझे तो लगता है कि विकास के आवरण में जो ये हिंदूवादी एजेंडा है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं हो रही है।
ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, और ये भी एक बात हो रही है कि जो जिन दलों पर सारा दारोमदार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दक्षिण की पार्टियां हों, जो बीजेपी से अलग अपनी एक विचारधारा रखती हैं, उन दलों के कामकाज को लेकर के जो उनकी आलोचना होती है या भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर के जो उनकी बात कही जाती है, उसमें जो असल मुद्दे हैं वो कहीं उन पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
देखिए असल मुद्दा इसका क्या, हमारे देश का क्या असल मुद्दा है? असल मुद्दा है गरीबी, असल मुद्दा है विकास, असल मुद्दा है बेरोजगारी से लड़ना। आप भारत को कैसे उठाएंगे, कैसे आगे ले जाएंगे, असल मुद्दा ये है। लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अब आप लोगों के बारे में नहीं सोचते, भारत नामक एक मानचित्र के बारे में सोचते हैं। ज़रूर सोचिए, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें ये मान के चलिए कि लोग हैं, इन लोगों के बारे में आपको सोचना है, इन लोगों की ज़िंदगी कैसे आपको आगे उठानी है इस बारे में सोचना है। तो इस बारे में सोचा जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा हूँ, लेकिन भावनात्मक एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का नारा दे दिया गया है, और उसका जो भी मुखालफत करे, उसके खिलाफ कोई तर्क दे, तो वो उसको राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, एक हमें गहरी विचारहीनता की तरफ, गहरी विकल्पहीनता की तरफ ले जा रही हैं, जो कि बहुत ही त्रासद है।
जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जी अपना नाम बताइए। उमेश कुमार
जी, सर।
जी उमेश जी बताइए क्या कहना है आपका?
सबसे पहले तो मधुसूदन साहब को मेरा अभिवादन, डिब्रूगढ़ चाय बगान असम केंद्रगुड़ी से।
जी डिब्रूगढ़ से बात कर
नमस्कार,
रहे हैं।
नमस्कार नमस्कार
जी, बताइए उमेश जी।
आपको मैं बराबर टेलीविजन पर देखता हूँ सर
जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं वो बताइए।
इस मुद्दे पर मुझे ये कहना है सर कि भारत में अवसरवादी राजनीति के लिए गठबंधन तो कर लिया जाता है, और चुनाव से पहले वाला गठबंधन जो है ज्यादातर सफल नहीं होता है। मैं जब काफी छोटा था, वो जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, उस समय भी एक गठबंधन सरकार बनी थी
जी,
इस पर हमारे रेहान फजल साहब ने एक विवेचना भी प्रस्तुत की थी। उस समय मैं छोटा था, लेकिन उसको मैं बीबीसी के समझ पाया
जी,
वह भी सफल नहीं हुआ। और आज के तारीख भी ये जो है मतलब अप्रासंगिक लगता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय न्यूक्लियर डील के वक्त
जी,
उस समय जो लोग साथ में थे उन लोगों ने साथ छोड़ दिया, और जो लोग साथ में नहीं उन लोगों ने राष्ट्रहित में समर्थन किया था सर। लेकिन आजकल ऐसा प्रसंग कम मिलता है।
गठबंधन की राजनीति पर कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो भारत में होते तो रहे हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहे हैं।
हमारे
कुछ पुराने उदाहरणों का
हमारे यहाँ एक लेख कभी छपा था
जी,
जिसमें जिसका शीर्षक था कि टूटने के लिए ही बनती है जनता पार्टी या जनता दल
जी।
तो ये बात सही है कि जब जब जरूरत होती है तब ये पार्टियां बनती हैं जो जिसमें तमाम दल शामिल हो जाते हैं और फिर अपना एक ऐतिहासिक दायित्व पूरा करके फिर अपने अंतर विरोधों का शिकार हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी हमारे यहाँ वो परिपक्वता आई ही नहीं है, सारी स्थितियाँ उस तरह की हैं। आप ये देखिएगा कि ऐसी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों को आपस में जुड़ना चाहिए और जुड़ेंगे, लेकिन वो मोदी की चुनौती का सामना कैसे करेंगे इसके लिए कोई नेतृत्व अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और पार्टियों में भी जो कोहेसिव होना चाहिए, जिस तरह की किस मुद्दों के आधार पे उनमें जुड़ना चाहिए, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है।
नहीं देता है। राम कुमार मीना हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी या मोदी को वैसे हराना आसान है, बीजेपी कोई अजीय पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी को गरीब किसान विरोधी या मजदूर व्यापार विरोधी ऐसा बताने के लिए जो व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा, विपक्ष उसमें बुरी तरह से नाकाम है और यही वजह है कि ये स्थिति हो रही है। वो कहीं भी सामने ठहरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं परिवारवाद की समस्या है, कहीं जो है भ्रष्टाचार की समस्या है, और आपस में तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है दोनों में, मतलब एक दूसरे के साथ आने की इच्छा नहीं दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे सुधार की क्या गुंजाइश बचती है, कैसे मतलब आपको लगता है कि ये स्थिति बदलेगी कैसे सुधार की जगह?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि कोई एक विचार पुरुष, कोई एक क्रांति पुरुष जब जेपी जैसा तो है नहीं, इन्हीं पार्टियों के बीच से कोई पैदा हो वो भी दिख नहीं रहा है। अब यह है कि आपको मारा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है, आपकी मरम्मत की जा रही है, तो मरम्मत के दौरान आप बचने के लिए कुछ अपना एक तरह का गठजोड़ बना लें उसको, लेकिन कैसे आप सस्टेन करेंगे ये सवाल तब तक वो नहीं होगा जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि इन चार मुद्दों पर या इन पांच मुद्दों पर कुछ भी हो जाए, जब तक ये हमारे मुद्दे पूरे नहीं होते हम इस पार्टी को, इस गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे, हम इसको एक आदमी को नेता बनाते हैं, इसके नेतृत्व में काम करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज सोचा जाए और कल हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता।
लेकिन एक और बात है कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, मतलब उसी आंदोलन की पैदाइश वो हैं, और उससे काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी और ऐसा लग रहा था कि एक विकल्प तैयार खड़ा हो रहा है, लेकिन वो आंदोलन भी अब लगता है कि कहीं पीछे छूट गया है।
मैंने उस आंदोलन का बड़ा समर्थन किया था और मतलब अपना लिखते पढ़ते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि उस आंदोलन का जो ज़्यादा लाभ मिला वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि जो सरकारें उससे पहले थीं वो भ्रष्ट सरकारें थीं, भ्रष्टाचार था, उसी को लेकर वो आंदोलन हुआ था, तो इसलिए उससे निकले ज़रूर अपने अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण और ये सब, लेकिन ये लोग भी एक नहीं रह सके। आप लोग जो तपे हुए लोग थे, जो उस आंदोलन से निकले थे, उनको तो एकजुट रहना चाहिए था, वो एकजुट नहीं रह सके। और ये जबकि मैं मानता हूँ कि आप सरकार ने दिल्ली में तमाम बाधाओं के बावजूद कुछ अच्छे काम किए हैं, निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन वो जिस तरह से इधर उधर भागे, पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसी मुद्रा बना ली जैसे हर बार हर समय वो एक कोलाहल में, दूसरों से लड़ने जुड़ने में ही, मिटने में ही, सब भिड़ने में ही सब समय अपना गंवा रहे हों, इससे उनकी इमेज को एक नुकसान पहुंचा है। और इस आंदोलन के जो जनक थे वो ही कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं।
जी,
आज करना हजारे।
मैं वापस आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक और हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ सर, मैं मोहम्मद वाजिद अली अंसारी बात कर रहा हूँ।
वाजिद अली अंसारी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
सर,
जी नमस्ते।
सऊदी अरब से,
सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
सर, ये जितने भी दूसरी दल के आदमी जब हो जाएंगे, उसे तो बीजेपी की नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो सर जातिवादी की नौकरी कर रही है। जब से ये बीजेपी हुई है तब तो ये आपस में ये लोग कभी 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 ये उसे दूसरी पार्टी का तो जीतने का तो चांस है। अभी ये जब से हुई है तब से तो मुसलमानों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है।
आपको लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो साथ आ रहे हैं?
हाँ वो सर सब लगता है, जैसे ममता बनर्जी अभी मिली अखिलेश यादव से, अभी दो दिन पहले नीतीश कुमार जी मिले हैं सोनिया गांधी जी से
जी।
उसे तो साफ साफ लग रहा है कि सब एकजुट हो रहे हैं। उससे पहले जब बिहार में इलेक्शन जब हुआ था तो उससे में भी बोल रहे थे कि हम लोग सब मिलकर दल बनाएंगे।
जी जी
वो लगता है कि दल बन गया।
अच्छा अच्छा आपको लगता है कि जो विपक्षी दलों के बीच में इन दिनों जो कोशिश हुई है, चाहे वो ममता बनर्जी हों चाहे नीतीश कुमार हों, ये लोग इसमें इतनी कितनी उम्मीद देखते हैं आपकी? ममता बनर्जी जो अपने राज्य में बहुत सफल हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार जो है वो अपने राज्य में बहुत सफल हैं, और शायद वामदल भी इनके साथ आ जाएं, इसकी कितनी उम्मीद देखते हैं आप?
देखिए ये आपस में एकजुट होते हैं और उसका असर राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ता है, वो तो मैं कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा ये तो मुझे नहीं लगता। राष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी का ही NDA का ही जीत कर आएगा, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त भी इसी तरह एक जिस तरह एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह एकजुट रह सकें और इतना वोट इकट्ठा कर सकें जो वाकई में लगे कि बहुत कम वोटों से जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो फिर आगे इनमें एक तरह का तालमेल बने और ये उन 2019 के चुनावों के लिए एक महागठबंधन बनाकर आगे ले जाने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लोगों के व्यक्तित्वों को लेकर, उनकी शख्सियतों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर, उनके कारनामों को लेकर एक तरह का अभी तमाम तरह के विरोधाभास हैं, और उस और कोई एक ऐसी चीज़ जो जिसमें सामंजस्य बन सके, जो एकजुट हो सके, वो अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
क्या वजह क्या है? मतलब जैसे अगर जो जिन समस्याओं से ये दल जूझ रहे हैं वो समस्याएं BJP के लिए भी उतनी ही मतलब होनी चाहिए प्रभावशाली, क्या वजह है कि इस वक्त जो है सारी समस्याएं दूसरे दलों में ही दिख रही हैं और BJP मजबूत होती जा रही है उनके आगे? क्या क्या असल क्या वजह देखते हैं आप? क्या उनके पास बहुत प्रभावशाली नेता है, सिर्फ यही एक वजह है या और भी दूसरी?
देखिए एक तो प्रभावशाली नेता तो है ही
जी,
दूसरी बात उनका कैडर है, कैडर बेस्ड पार्टी है, RSS के सारे लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, और ये दूसरी पार्टियाँ अलग अलग बिखरी हुई हैं। ये बात भी सही है कि 31% मत वोट लेकर ये सरकार बनी 2014 में, जो सबसे कम मत प्रतिशत है, लेकिन सरकार बना ली उन्होंने और अच्छे अच्छे सब देखते रह गए। अब अगर इस वोट प्रतिशत को, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो इनका वोट इतना भारी पड़ता कि इनको जो हराना मुश्किल था।
मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, एक हमारे साथ और श्रोता जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी हेलो।
जी
जी मेरा नाम राहुल कुमार झा है, बेतिया बिहार से।
जी राहुल जी बेतिया से, जल्दी से बताइए, बहुत कम समय है।
मैं बोल रहा हूँ सर, मेन मुद्दा ये है कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं बहुत सारी ऐसी संवेदनशील मुद्दाएं हैं, इस पे इनका रुख राष्ट्र के थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ये जो पार्टियां हैं ये राष्ट्र के हित की जब बात आती है तो इसमें एक अलग तरह का अपना नजरिया पेश करते हैं, जो कि यूथ को अच्छा नहीं लगता है। आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा अलग सा सोचता है और उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। जैसे सीताराम येचुरी कभी चाइना के विरुद्ध नहीं बोलते हैं जबकि चाइना इतना इंटरवेंस कर रहा है। पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो अमेरिका और रूस का हथियार सेल करने का एक ये है जो कि हम लोगों को प्रधान करता है। इन सारे मुद्दों पे इनका जो सोच है वो अस्पष्ट नजर नहीं आता है।
आप वही बात कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। राहुल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, समय नहीं है अब मेरे पास और मेरे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम इशारा कर रहे हैं। तो ये मूल रूप से ये बात एक ये भी सामने आ रही है कि जो राष्ट्रवाद की जो सोच है उसको भुना पाने में BJP बहुत सफाई से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां बाकी दल काफी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं दूसरे मुद्दों के साथ। ये भी बहुत कम समय,
राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जैसा मैंने कहा कि कोई उसके खिलाफ एक तर्क भी करे तो उसको राष्ट्र विरोधी कर देते हैं साबित। तो लेकिन ये बहुत ही गहरे रूप से ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए अभी हमें सावधान होने की जरूरत।
बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शाकिर आलम स्टूडियो मैनेजर के साथ, निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार,
धन्यवाद।